भी आवेदन करते हैं वो लोग नहीं सुन सकते, वो लोग भी कुछ बर्दाश्त करेंगे तो कृष्ण से पूछ करके देंगे। इन लोग के पास कुछ देने के लिए नहीं है, नहीं दे सकते, और देंगे भी तो क्या, धन देंगे तो वो तो नष्ट हो जाएगा। पुत्र परिवार इसे ही सुख शांति नहीं हो सकती, पहले मैंने बतलाया, इसलिए वो गॉड नहीं चीज देंगे, भगवत भक्ति और शांति और सुख नहीं दे सकते जिन उन लोगों के पास नहीं दे सकते। इसलिए यदि देते हैं, यदि यही बात होती ये सब कुछ दे देंगे तो शंकर जी कृष्ण की किस लिए सेवा करते हैं और हनुमान बन करके उनकी सेवा करते हैं, किस लिए करते हैं? सभी लोग भजन करते हैं, बस केवल कृष्ण ही एक ऐसा है जो किसी का भजन नहीं करता। हाँ एक है तो वो गोपनीय है, ये दूसरे का नहीं, समझने वाले समझे, बस एक ही का भजन करता है दूसरे का, और बाकी सब लोग उसी का ही सेवा करते हैं। एक समय की बात है, एक बार शंकर जी के सेवकों से और कृष्ण के सेवकों से कुछ झगड़ा कर, और वो केस चला गया कोर्ट में जज के पास। शंकर जी वाले कार्य जैसे वो कहते हैं कि कृष्ण बड़े हैं, तो कृष्ण कैसे बड़े हो जाएंगे? अरे शंकर जी तो बाबा सबके हैं, इनसे जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय होती है। ये लोग कहते हैं कि वो गोपियों के घर में जो मक्खन चुराता है, गैया चुराता है, वही बड़ा है, ये असंभव बात, इसलिए कोर्ट में केस कर दिया और कोर्ट से सम्मन किया कृष्ण के भक्तों को भी। और फिर बहस हुआ, जज ने पूछा बड़ो तुम्हारा क्या कहना है, ये शंकर जी विश्व ब्रह्मांड को जो चाहते हैं वही दे देते हैं और यही सबसे बढ़कर के आराध्य है, कृष्ण नहीं, इसलिए ये लोग जब दादी हटा लें ये कृष्ण ही परम सबसे भगवान के भी भगवान। भाई आपका क्या कहना है? तो हमारा तो बस यही कहना है, कृष्ण से तत्व नहीं है, भागवत में भी लिखा है कृष्ण तो भगवान, गीता में भी कहा है मत्तः परतरं नास्ति किंचित् धनंजय, हे धनंजय मुझसे बढ़कर के और कोई परतत्व नहीं है, इसलिए सब धर्मों को छोड़ करके हमारा शरण अपना हो जाओ, ये सर्वत्र लिखा है। वो लोग ऐसा कोई प्रमाण दें तो उन लोगों ने भी इधर उधर से कुछ जैसे ऐसे नाक पकड़ते हैं वैसा ही कोई उपस्थित किया हाथ में, दोनों को नोट कर दिया जाए। अच्छा कल हम इसकी राय दें, लोग सब ले आए। एक बात करना, राय देने के पहले मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे आराध्य देव का फोटो कैसे है और तुम्हारा आराध्य देव का फोटो कैसा है, ये ले आना, नहीं तो मैं भी ठीक से निर्णय कर रहे हैं। तो ये दस्तावेज चाहिए, जैसे वहां पर लेते हैं दस्तावेज, तो वो अपने आराध्य देव का फोटो ले आया और ये भी कृष्ण का फोटो ले आए और उनको दिया, उन्होंने देखा, देखकर के कहा जी ठीक है, मैंने विचार किया, वो विचार कौन था, अंग्रेज था, ही वाज क्रिश्चियन विचार, उन्होंने देखकर के कहा मैंने तो पहले देखा नहीं थी, आज देखा हूं, नाम तो कुछ सुना था, ये जो बैठा है इसके सांप चारों तरफ है और ये ध्यान लगाया है, किसी का ध्यान करता है, तो जिसका ध्यान करता है वो आराध्य देव होगा। तो उसका मन होता है कि शंकर जी का कोई आराध्य देवता और है जिसका वो ध्यान कर रहे हैं। और ये दूसरे फोटो को देखते हैं, चैन से बंसी बजा रहा है, मुस्कुरा रहा है और गैया क्यों चला रहा है। तो ये तो निश्चिंत मालूम होता है, किसी की आराधना नहीं कर रहा है। इसलिए मेरी राय में मैं राय देता हूं, ये जो कृष्ण का वासा दिखता है यही पर देवता है, इससे बढ़कर के कोई देव। मैं मेरे समय से आशा आता है ये भी शंकर जी है, वो कृष्ण का ध्यान कर रहा है, राय जी करके देखो। इसमें भी रास्ते की बात है, मैंने किस लिए सुना है, और नरकल ही नहीं सुना दिया। लोग ठीक नहीं कर पाते हैं कि कौन से देवता से, दुर्गा मैया के लिए कहते हैं कि ये सब कुछ देती है, धन जन को परिवार, और उन्हीं से ही कृष्ण पैदा हुए हैं। सबसे बड़ी बात, मुश्किल बात है, सबको छोड़ देंगे किंतु दक्षिण के रहने वाले इधर के लोग गणेश जी को लंबोदर तो नहीं छोड़ सकते, असंभव है। तो फिर कृष्ण का भजन, कृष्ण के भजन में एक बड़ी भारी गड़बड़ी है, विपत्ति है। वो लोग तर्क उपस्थित करते हैं, कृष्ण का जो भजन करता है उसके सारे अर्थ को, संपत्ति को वो हरण करके उसे रास्ते का भिखारी बना देते हैं, पथ का फकीर बना देते हैं। तो ऐसे कृष्ण का कौन भजन करेगा। और जो दुर्गा मैया, कृष्ण, लंबोदर महाराज जो देते हैं धन पुत्र परिवार, इससे तो हम सुखी रहेंगे नहीं। यदि सुखी रहते तो शंकर जी सबको छोड़ करके क्यों है। यहाँ पर मुंड माला पहनते हैं कि सबको मर जाना पड़ेगा, स्मशान का राज बोलते हैं। इसलिए देखो सबको अंत में मर जाना है और आग में जल करके राख हो जाना है, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। कैसे मुट्ठी बांध करके आए और जाना कैसे पड़ेगा, याद रखो। और यदि बचपन में ही भगवान का भजन हो गया तो हो गया, नहीं तो कमर यदि टेढ़ी हो गई ना, एक दिन होगी कमर टेढ़ी, और बुढ़िया होने के बाद में लठिया से चलना पड़ेगा तो भजन होगा। उस समय जिसको अपना लड़का कह रही है, बेटा कह रहे हैं, वो बड़ा होने पर तुम डोकरी और डोकरों को घर से निकाल देगा, पानी के लिए भी नहीं पूछेगा, और कमर भी टेढ़ी रहेगी, सीधी नहीं होगी तो भजन क्या होगा। और गाली देने जो बूढ़ा मर क्यों नहीं जाता, बुढ़िया क्यों नहीं मर जाती। इसलिए बचपन से ही भजन करो, अभी से ऐसा मत सोचो आज करो सो कल करो, कल करो सो परसों, क्या खटखट में पड़े हुए हो, समय पर पड़ा है। ओम प्रकाश जी का ये कहना है, है कि नहीं है। खटखट में पड़ने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि आ जाओ आप संन्यास ले लो, तुमको पांच लड़के बहुएं हो गई, नाती भी हो गया, अब लड़के का भी लड़का होने वाला शायद है, उनको भी अब नजर पाल पोषण करके आएंगे, हमारे गुरु भाई हैं। तो कहने की कलाम कर, तो मैंने कहा उसके लिए भाई क्या खटखट में पड़े हुए हो, आज करो तो कल करो, कल सो परसों, परसों करो तरसों पर समय। और बुद्धिमान जो व्यक्ति होते हैं ना, वो क्या करते हैं, काल करो तो आज कर, आज करो सो अब, पल में पल हो यदि बहुत करोगे तब, आज से अभी से तुरंत भजन आत्मा कर दो, कल के लिए मत रखो। इसे घर के लोग वाले भी जो सुन रहे हैं कल से फजल कर लेंगे बुढ़ापा होने के बाद में, अभी तो संसार का सुख भोग लें। भैया कल किसने देखा? कोई नहीं देखा। इसलिए आज से भगवान का भजन यदि नहीं किया कि जन्म जन्मांतर में पशु पक्षी कीट पतंग कहते थे पीछे से दौलती झाड़ी की उसको भी साथ आना पड़ेगा, और बंगाल में यदि मछली का जन्म हो गया तो जीते जीते ही तेल में डाल दे गरम बस। इसलिए बचपन से ही भगवान का भजन कीजिए गंभीर रूप से। कोई कह सकता है कि भजन करना तो बड़ा कठिन है भाई, सबको छोड़ करके धन संपत्ति और स्त्री पुत्र भजन कैसे करेंगे? नहीं नहीं ऐसा मत सोचो, घर में रहो बाहर रहो गृहस्थ रहो त्यागी रहो ज्ञानी रहो, लड़का लड़की मनुष्य पुरुष स्त्री जो कभी रहे थोड़ा सा खान पान में सफा, मुर्गा मुर्गी मत खाना, वो जल का एक होता है जल का
I'm प्रभु स्वयं विष्णु पाद सुष्मद भक्ति प्रक्षण केशव गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि बार सप्तम चंद्र प्रणति ज्ञापन करता हूं। तत्पश्चात श्रीदंडी वैष्णवगण वैष्णवीगण एवं उपस्थित सज्जन मंडली और बेटा और बेटियों और माताओं सबको मैं अपना यथा योग्यतागत संवाद अभिनंदन करता हूँ। कल हमने श्री रामचंद्र जी की लीलाओं में उनके अवतरण का कारण इत्यादि सब मैंने बतलाया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। महाराज दशरथ रघुकुल या पाकुकुल में पैदा हुए। मूल स्रोत सूर्य उनके हैं, आदि वंश के पहले पितृपुरुष सूर्य हैं, इसलिए इनको सूर्य वंशीय राजा कहा जाता है। कृष्ण और राम वाले और क्षत्रिय नहीं है, तो वंशी क्षत्रिय राम नहीं है, वो तो स्वयं भगवान है। जगत का कल्याण करने के लिए उस वंश में प्रकट हुए। यदि वो क्षत्रिय रहते तो हम लोग उनका प्रसाद नहीं लेते। कृष्ण यदि ग्वाले होते तो उनका प्रसाद कौन लेता, इसलिए ऐसा नहीं। जहाँ कहीं भी यदि सुखदपुर में भी पैदा होते हैं तो बारह देव का नृसिंह देव का हम लोग प्रसाद लेते हैं, कुर्मदेव का लेते हैं। इसलिए भगवान किसी जाति में नहीं बचे हुए। ऐसे वैष्णव लोग भी यदि कोई शुद्ध वैष्णव हो, वैष्णव तात्पर्य शुद्ध हो, ऐसा नहीं कि वैष्णव के नाम पर अभी वैष्णव नहीं है, संसार में फंसे हुए हैं, वैष्णवता है नहीं, वो नहीं। जो सचमुच में वैष्णव है उसका भी कोई ज्ञाति और समाज नहीं, वो कुल में आए हैं पवित्र करने के। कहीं ना कहीं तो उनको आना ही पड़ेगा, या तो खंभे में से भी आना पड़ेगा। तो सूर्यवंशी राजाओं में बहुत इक्ष्वाकु रघु दिली भगीरथ इत्यादि बहुत से बड़े बड़े राजा, उनकी अपना अपना बहुत बड़ा भारी महत्व रखता है। उसमें आप भगीरथी गंगा भी उन लोगों की लाई हुई है, पहले ये नहीं थी। उसी तरह से भगवान रामचंद्र इसी कुल में आए। पिता का नाम दशरथ, माता का नाम कौशल्या, फिर तो ये पीछे बातें हैं। महाराज दशरथ जब राजकुमार थे उनका रथ दसों दिशाओं में चलता था, अतः तो दसों दिशाओं को आकाश पाताल को भी और सारी दिशाओं को भी उन्होंने विजय कर लिया था। 360 रानियां पटरानियां थी और रानियां को तो की गिनती नहीं, पटरानियां ही 360। उनमें दो प्रधान थी, कौशल्या जी और सुमित्रा, किसी को भी बेटा नहीं हुआ। अब हमारा दशरथ अधेड़ उम्र में आया, अधेड़ उम्र मैंने उस समय का समझिएगा 50-60 हजार वर्ष की आयु, सतयुग में तो लाखों वर्षों की आयु होती थी, त्रेता में थोड़ी सी रह गई आदि, और द्वापर में उससे भी आजकल कलयुग में अधिक से अधिक 100 वर्ष की आयु पालन करके चल रही। तो जब वो उनके केश आधे पक गए आधे काले रहे तो बड़े चिंतित हुए कि हमको कोई लड़का तो है नहीं, तो हमको पिंडदान कौन करेगा और हमारे बाद में राज्यों को कौन देखेगा, जैसा कि संसार के लोग सोचते हैं। हमारे भक्तों के पिता इत्यादि भी माताएं भी ये सोचती हैं और सोचते हैं कि हमारे बाद में हमारा बेटा यदि भक्त हो गया, हनुमान जैसा ब्रह्मचारी हो गया तो फिर क्या होगा, होना बड़ा कठिन है भाई, किसी के कहने और सोचने मात्र से नहीं हो जाता। महाराज दशरथ विचार कर रहे थे, एक दिन ऐसे ही करते करते आक्षेप के लिए वो विचार कर रहे थे, शाम हो गई और शाम होने पर पास ही कैपाय देश था जिसको अफगानिस्तान इत्यादि कह सकते हैं, उसी के तरफ में था, निकट में ही पंचाली पंचाल देश पंजाब की रहने वाली थी, ऐसे ही वो आस पास में ही वो कैकय का राज्य था, राजा का नाम था कैकय। अपने मित्र के पास में गए, आज यहीं पर विश्राम करके कल सवेरे हम अयोध्या में लौट जाएंगे, अयोध्या बहुत दूर है। गए महाराज ने अपनी सुंदरी किशोरी लड़की कैकई को अभी 13-14 वर्ष की उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया, बेटी ये हमारे मित्र आए हैं, इनको रहने के लिए खाने पीने और सारी चीजों की व्यवस्था तुम कर देना, किसी दूसरे नौकर पर नहीं छोड़ा, अपनी बेटी पर छोड़ा। वो बहुत बुद्धिमती थी, बहुत बुद्धिमती और सुंदरी भी थी, उसने महाराज दशरथ की बड़ी सेवा की, खाने पीने से लेकर के सोने इत्यादि सारी व्यवस्था परिपूर्ण रूप से कर दी। जब सवेरा हुआ, जब महाराज दशरथ चलने के लिए हुए तो महाराज कैकेयी से कहा, महाराज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आप मित्र होने के नाते हमारी बहुत सेवा शुश्रूषा की, विशेष करके आपकी लड़की बड़ी सुंदरी और बड़ी दक्ष है, जिस प्रकार कुशलता से बुद्धिमत्ता से मेरी सेवा की मैं बहुत प्रसन्न हो गया। दूसरी बात एक आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि इस लड़की को मुझे आप कन्यादान कर दीजिए, ये बहुत ही अच्छी सेवा करती है, बुद्धिमती, शादी तो करेंगे ही कहीं न कहीं, तो मेरे साथ में शादी कर दीजिए। उन्होंने कहा कि भाई तुम हमारे मित्र हो, फिर भी मैं ये बात नहीं करूँगा, इसलिए नहीं करूँगा कि तुम्हारी सब 360 पटरानियाँ हैं, एक एक से सुंदरी हैं, भूई हैं, इसलिए यदि उनको लड़का पैदा हुआ तो वही राजकुमार होगा, राजा का स्थल पर वही राजगद्दी पर बैठेगा, इसलिए मैं नहीं करूंगा, मैं तो यही वहीं पर साधु करूंगा जहाँ पर मेरे लड़की से पैदा हुआ लड़का ही राजगद्दी संभाले। तो महाराज हंसने लगे, बोले जी हमको तो कोई लड़का ही नहीं, और यदि बाई चांस इससे लड़का हो गया तो राजगद्दी पर बैठेगा, दूसरा कौन बैठने वाला है। बहुत मुझे प्रसन्नता है और आपका प्रस्ताव स्वीकार है, मुझे आप इस लड़की का कन्यादान कर। उन्होंने कहा कि देखो याद रखना, भूलना मत, इसके गर्भ से यदि कोई पुत्र पैदा हुआ तो इसी को राजगद्दी देनी होगी। यह ठीक है, बैठ जाओ तुम क्या दिल्ला। तो शादी हो गई, बड़े धूमधाम से आपने शादी हुई और गए अपने राजधानी में लौटे, और कौशल्या जी ने, सुमित्रा जी ने अपनी नई छोटी बहन का बहुत ही स्वागत किया। देखने में भी खूबसूरत लगती, अभी छोटी उम्र की है इसलिए और भी खूबसूरत और गुणी भी थी घर में रहने में। उसके लिए महाराज दशरथ ने कनक भवन बनाया, सोने का भवन स्पेशल, उसमें वो रहने लगी। किंतु अभी तक किसी को संतान नहीं। इधर और एक घटना हुई, देवताओं में और दैत्यों में दानों में युद्ध हुआ, उसमें देवताओं ने महाराज दशरथ को निमंत्रण किया कि आप ही अस्त्रों को दैत्यों को हरा सकते हैं, हम लोग नहीं उनसे इसलिए कृपा करके आप पधारिए उस युद्ध में और हम लोग की सहायता। उन्होंने ठीक है और गए, युद्ध होने लगा और अंत दिन घना घोर युद्ध हुआ। उस युद्ध में इनकी विजय तो हो रही थी महाराज दशरथ की, किंतु उनका रथ का चक्के की जो धुरी है वो टूट गई तो ये बड़े मुश्किल में फंसे, कई रथ की पत्थी वो झट उतर करके टूट गई और धुरे को अपने हाथों से उठा लिया और वो युद्ध करते रहे, अंत में इनकी विजय हुई। तो जब युद्ध का में विजय हो गई तो जबकि लौटे ले लो तो महाराज दशरथ बोली आज तो तुमने इतने साहस का काम किया और हमारी इस विजय तुमने साथ दिया है, इसलिए तुम दो बार हमसे मांग लो, दोनों चक्के हमारे तक अचल हो गए इसलिए दो बार मांगो। मैं किसी बार तो तुमने मेरी जो सहायता की तो मैं आपकी साथ हर में ही हूं, आप और मैं थोड़े अलग हूं, जैसे इसलिए आपको वरदान देने की जरूरत होगी, आप अपने को ही वरदान दे दीजिए, अच्छा भला है। तो अगर ना बात तो ठीक है, तुम मेरी अपनी हो किंतु फिर भी मैं तुमको देना चाहूँ, अरे तो ठीक है मैंने बात ले लिया और जब जरूरत पड़ेगी मैं ले, जब नहीं माने तब ऐसा। उसका हृदय कोमल था, बड़ा शांत था, उस समय में कोई विकार नहीं था। अब ये दो बातें सब समय याद रखना होगा, कई कई के कई कुछ दिन और बीते। एक बार ये श्री रामचंद्र जी अपनी मैया की गोदी में कम रहते थे, कई कई लाड प्यार भी करते थे उसी की गोदी में रहते थे, और भरत भी खेलते थे कौशल्या की गोद में। कुछ दिनों के बाद में एक दिन रामचंद्र जी को अपनी गोदी में खिला रही थी तो राम ने उनका ये छोड़ी पकड़ करके बोले जी मैया तुम बड़ी प्यारी मैया हो, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। बेटा हमारा सर्वस्व तो तुम्हारे लिए है, तुमको मांगने की क्या जरूरत है। तो नहीं मैं कुछ मांगना विशेष चाहता हूँ। मांगो तो ऐसे नहीं मांगूंगा, आप कह देंगे कि हाँ मांगो मैं जरूर दूंगा, संकल्प करें। अच्छा तो बेटा संकल्प ही समझो, मैंने संकल्प कर दिया जो तुम मांगेगी। तो तुमसे ये मांगता हूं जब तेरी शादी होगी और राजगद्दी पर मुझे बैठने का अवसर आएगा तो उस समय तुम महाराज दशरथ से दो बार मांगना कि रामचंद्र 14 वर्ष के लिए वन में जाए, राम जी का वनवास हो, राज्य न मिले और ये राज्य मिले फर्क, ये मैं चाहता हूं बस। तो रोने लगी वो, ये ऐसा कैसे मैं वरदान सकता हूं, ये मैं ऐसा वरदान नहीं दूंगी। तो फिर तुमने संकल्प क्यों किया, इसमें कुछ खास कारण है? मैं बहुत खुशी होंगी हमारी इच्छा पूर्ण हो जाएगा। क्यों? भगवान सोच रहे हैं मैं तो देवताओं के कार्य के लिए आया हूं, हम की प्रतिष्ठा करने के लिए, दैत्यों का दलन करने के लिए आया हूं और कुछ विशेष लीलाएं करने के लिए आया। यदि मेरा वनवास नहीं हुआ और राजगति पर मैं बैठ गया तो वो काम पूरा नहीं होगा, इसलिए वो जीत करने लगे। तो वो रोते रोते बोली, जी ने जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं तो हृदय से ऐसा नहीं किया। अंत में उन्होंने बहुत कुछ कहने पर उन्होंने संकल्प करके पूरा किया, अच्छा ठीक है मैं ऐसा करूंगा। समय चलता गया, एक दिन उनके राज्य में महर्षि विश्वामित्र पधारे, बड़े ब्रह्मवादी ऋषि, पहले तो राजर्षि थे, इसके बाद में ब्रह्मर्षि बने। बहुत कठिन आचरण के द्वारा सब आदमी ब्राह्मण होता था, ब्राह्मण कुल में पैदा होने से ही ब्राह्मण हो जाएगा, ऐसी बात नहीं थी पहले। अब न तो ब्राह्मणत्व है न वैसे विचार, सम दम शिक्षा इत्यादि, धन चिंता क्षमा इत्यादि गुण हो, ब्रह्म तत्व को जानने वाला हो तब तो वो ब्राह्मण, और नहीं तो ब्राह्मण नहीं, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं, अपने कर्मों से विचारों से कोई ब्राह्मण होता है। गीता में भी ऐसा बदला है, तप वर्ण व्यास गुण कर्म विभाग, गुण और कर्म से। रावण कुलस्थ ऋषि का लड़का ब्राह्मण था, किंतु तो कोई भी ब्राह्मण नहीं कहता, उसे क्या कहते हैं, दानव कहते हैं। उसी प्रकार से प्रहलाद महाराज तो किसके बेटे थे, दैत्यों के, उनको ब्राह्मण भी पूजा करते हैं। भगवान की पूजा पीछे नृसिंह जी की, पहले प्रहलाद महाराज की जय दे करके तब नृसिंह जी की जय। भक्तों में प्रहलाद बहुत श्रेष्ठ है, यदि भक्त बनने की इच्छा हो तो प्रहलाद महाराज जी का आचरण, मैं तो भक्ति नहीं हो सकती। तो क्या था, विश्वामित्र जी आए, बहुत अवभगत किया, आदर किया, तो ये ब्रह्मचर्य के उत्सव है। रात भर रहे महाराज दशरथ ने उनकी अपने हाथों से सेवा की, कौशल्या और सब लोगों ने उनको प्रणाम किए। वशिष्ठ जी के ये मित्र थे, पहले तो शत्रु थे पीछे मित्र बन गए। वशिष्ठ जी भी सुन करके इनसे मिलने के लिए आए, उन लोगों में कुछ बातें हुई। जब सवेरा हुआ तो विश्वामित्र जी जाने के लिए तैयार हुए और महाराज से बोले, मैं किसी खास कारण से आया, ऐसे ही नहीं आया, आजकल मैं सिद्धाश्रम में बहुत से दैत्य लोग हो गए, हम लोग जब तपस्या करते हैं, आहुति देते हैं यज्ञ में हवन के बाद में, तो वहां पर रावण के कुछ सेनाएं हैं और वहां पर मारुति सुबाहु इत्यादि सब है, और मेरे यज्ञ में बाधा देती हैं, हार मान रुधिर की वर्षा करने लगते हैं और ऋषियों को ऐसे ही खा जाते हैं, तो हम मैं तो जगत को संपादन करने में रक्षा करने में समर्थ हूँ, बाणों से उनको मैं मार करके सब ठीक कर दूंगा, किंतु मैं तपस्या का आचरण इस समय कर रहा हूँ, इसलिए हमारे तपस्या में विघ्न आ जाएगी, इसलिए मैं आपके पास आए हैं। आप दोनों राजकुमारों को, राम और लक्ष्मण को मेरे साथ में दीजिए, ये जगत को बचा लेंगे, हम लोगों की रक्षा करें और आपका कल्याण। महाराज बोली, ये अभी तो दूध पीना छोड़ा है, ये छोटे छोटे बालक क्या कर सके, मैं चतुरंगिणी सेना के साथ में चलता हूँ, आपकी रक्षा करता, महाराज आपसे नहीं होगा, आप नहीं कर सकते, आपने वो सामर्थ्य नहीं है, मैं देख रहा हूं। आप किसी प्रकार से दें, बच्चों का भी कल्याण होगा, आपका भी कल्याण होगा, देश का भी कल्याण होगा, आप कृपा करके दे दीजिए। जब नहीं दिए तो बोलेंगे तो अभी मैं ऐसा भी संपात दूंगा कि तुम्हारा पंथ तंत्र सब खत्म। डर गए, उसी समय में बच्ची की जाए, महाराज आप क्या कर रहे हैं, आपके कल्याण के लिए आपके बालकों को मांग रहे हैं, उनको उचित शिक्षा देंगे, धनुष्माण की शिक्षा देंगे, ब्रह्म विद्या की शिक्षा देंगे, और भी कल्याण में देख रहा हूं, आप कोई चिंता मत कीजिए बच्चों को भी। जब उन्होंने अपनी पत्नियों से भी परामर्श कर दिया और अंत में बड़े दुखित चित्त से उन दोनों राजकुमारों को राम और लक्ष्मण की जोड़ी दी, और जितनी जोड़ी थी भरत और शत्रुघ्न की वहां पर लेकर के चले। बड़े प्रसन्न हुए, रास्ते में जाकर के पूछा कि भैया यहाँ से दो जाने का रास्ता है, एक तो है बहुत कठिन मार्ग है, बहुत कठिन मार्ग, उसमें दृष्टदानों से सांपों से इत्यादि से भरा हुआ है और दुर्गम भी है पहाड़ों के रास्ते से, और एक है सीधा साधा किंतु वो जरा दूर है, उसमें समय लगेगा, और ये जो शॉर्टकट है ये जरा दुर्गम है, किधर से चलते। और महाराज ने यहाँ पर एक चालाकी की, उन्होंने राम और लक्ष्मण को नहीं दिया था पहले, शत्रुघ्न भरत और शत्रुघ्न को दिया, तो उन्होंने पूछा कहीं चलिए आसान मार्ग से ही, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है लेकर के लौटे। महाराज आपने धोखा किया, ये तो राम लक्ष्मण नहीं है। तब फिर अंत में राम लक्ष्मण को ले आए, इनसे पूछा, इन्होंने कहा कि दुर्गम मार्ग से ही हम जाना पसंद करते हैं, आप समझेगी अब ठीक। लेकर गए रास्ते में, जबकि सिद्धाश्रम के पास में पहुंचे, सिद्धाश्रम में ही मेरा जन्म है, गंगा नदी के तट पर जहाँ पर रामचंद्र सुधारे सरकार सुबह कुमारा गंगा के तट पर, उसी आश्रम के पास ही हमारा ये जन्म है। तो देखा एक बड़ी भारी राक्षसी, विराट विशाल जैसे पूतना थी, बहुत भयानक उसके आकार, पेट मानो समुद्र जैसा, गड्ढा जैसा, आंखें भी वैसे, और आते ही रुधिर और रक्त की वर्षा करने लगे, और उनको समझ लिया गया मुझे हम लोगों को मारने के लिए यह राम लक्ष्मण को लाए, तो ठीक है वहीं से मारने के लिए चेष्टा करने लगी। और रामचंद्र जी ने क्या किया, विश्वामित्र जी ने उनको इशारा किया, और उन्होंने एक दुर्वाघात ली और उसको टेढ़ा करके धनुष बना दिया, और उस पर एक दुर्वाघात चढ़ा करके उसको बना दिया प्रत्यंचा, और उसी से एक बाण लिया संधान किया और उसके छाती में लगा वो गिर गया। देवताओं की धुंद भी बजने लगी और असुरों ने चारों तरफ से घेर लिया। रामचंद्र जी ने कहा कि आप देखो अब आप लोग जब देखिए हम दोनों आदमी दोनों भाई पारा दे रहे हैं। विश्वामित्र जी ने इसी बीच में राम और लक्ष्मण जी को, विशेष करके राम को, अपनी जितनी भी धनुष विद्याएं और मंत्र था सब मंत्र उनको धनुष्माण की ऐसा शिक्षा एक लब्ध जैसे ही नहीं, उसमें एक मंत्र हो, एक एक बाण के एक एक मंत्र होते हैं, मंत्र का ध्यान करके बाण चलाने से आग निकलने लगती है, सांप निकलने लगते हैं, हवा होने लगती है, वर्षा होने लगती है, फिर सांप निकल जाते हैं, इस तरह से कितने उसमें हैं। ब्रह्मांड कहलाता है जो संसार को जला करके भस्म करते हैं, वो सब विद्याएं इनको दी। और फिर यज्ञ करने के लिए बैठे, उस समय में उसी के दो लड़के थे मरीच और सुबाहु, सुबाहु को मारा तो वो तो मर गया, और इसको बाण लगा मरीच को, वहां से कितना हजार मारी दो लंका में जा सके, उसको बात याद की मरा तो नहीं लेकिन वहां पर जाकर के गिरा। इसलिए रावण को उसने समझाया था, उस राम से विरोध मत करो, और नहीं तो हमको एक बाण से यहाँ पर कर दिया और हमारे भाई को और मेरी मैया को भी मार डाला। इसलिए उसे सुलह कर दो, सीता को लौटा दो, वो सीता जी लक्ष्मी है अब मैं जानता हूँ, किंतु उसको भी माना नहीं। तो उसके बाद में रामचंद्र जी ने देखा जिनका यज्ञ समाप्त हो गया, तब विश्वामित्र ऋषि अपना यज्ञ पूर्ण आहुति और पौधाति के बाद में जब अस्तु लोग वहां रहे नहीं, बड़ी शांति श्रृंखला तस्थ हो गई। इसके बाद में महाराज मासी ने कहा, बेटे एक बात करना है, हमको प्रस्थान करना है महाराज जनक के यहाँ। उन्होंने बहुत आग्रह से मुझे निमंत्रण दिया है, आप अपने साथियों को लेकर के हमारे यहाँ पधारे, हमारी लड़की सीता का स्वयंवर है, आपको जरूर आना। तो उस स्वयंवर में मैं जाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी मेरे साथ ले चले, वो लोग भी चले। पासी में वो एक खाद है,